प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान में तीसरे अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के अफवा तंत्र के भागों के बारे में अध्ययन कर लिया है और राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चंबल नदी का अध्ययन कर लिया है। आज हम और मुख्य प्रमुख नदियां कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने और याद करें। तो चंबल नदी के बाद दूसरी नदी मुख्य नदी है राजस्थान की बनास नदी। यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यह राजसमंद जिले में खमनूर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी खमनूर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनूर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। तो पूछ लिया जाए बनास नदी कहां से निकलती है, तो खमनूर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनूर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर स्वाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी मुख्य रूप से राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर स्वाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वरम के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास, बीड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बिगूद भीलवाड़ा के पास स्थित है। बिगूद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता है। तीन नदियों का संगम होता है। बिगूद में किन किन तीन नदियों का संगम होता है? बनास, बीड़च और मैनाल। बिगूद, बिगूद कौन से जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। टोंक व स्वाई माधोपुर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे कौन से जिले स्थित हैं? टोंक और स्वाई माधोपुर। बनास की अन्य सहायक नदियां कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल हैं। बनास की अन्य सहायक नदियों में कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल आती है। नेक्स्ट नदी लूणी नदी। लूणी नदी यह अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी कहाँ से, किस जिले से निकलती है? अजमेर जिले से निकलती है। अजमेर के नागपाट से निकलती है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। लूणी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं और राजस्थान के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में बहती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में लूनी की सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया है। तो लूनी की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया। नेक्स्ट नदी अगली वो है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अममोरू नामक स्थान इस नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से अममोरू नामक स्थान से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है, किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? मिलती है खंभात की खाड़ी में। और लूनी नदी किस खाड़ी में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। माही नदी बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाकम है। माही की प्रमुख सहायक नदियों में सोम व जाकम है। माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम व जाकम। तो माही बजाज सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो बांसवाड़ा जिले में बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है? तो माही नदी पर बनाया गया। नाम भी माही बजाज सागर बांध और माही नदी। नेक्स्ट नदी बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बहराट पहाड़ी से होता है। बाणगंगा नदी ये जयपुर जिले की अरावली की बहराट पहाड़ी से निकलती है। बहराट, बहराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट नदी गगर नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। गगर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती हैं। इस नदी को प्राचीन सरस्वती की सहायक माना जाता है। गगर नदी को प्राचीन सरस्वती की सहायक नदी माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है गगर नदी। तो राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में हमने चर्चा की है। पिछली क्लास में चंबल नदी के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हमने बनास, लूनी, माही, बाणगंगा और गगर नदियों के बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। तो नदियों पर बांध बनाने से क्या क्या फायदा मिलता है? तो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं की महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत की मंदिर कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के विवरण के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने नदी घाटी परियोजनाएं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्यों कहा जाता है या तक चर्चा की है, और इसमें सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। बैराज किसे कहते हैं? सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर कहते हैं। इस प्रकार इस टॉपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो लिखें। पहला प्रश्न लिखें, बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनूर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। आंसर लिखे खमनूर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। दूसरा प्रश्न लिखें, लूणी नदी की चार सहायक नदियों के नाम लिखिए। लूणी नदी की चार सहायक नदियों के नाम लिखिए। आंसर लिखें जोजरी, बांडी, जमाई, सुकड़ी। जोजरी, बांडी, जमाई और सुकड़ी। तीसरा प्रश्न लिखें, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर लिखें जयपुर जिले की बहराट पहाड़ी से होता है। जयपुर जिले की बहराट पहाड़ी से, जयपुर जिले की बहराट पहाड़ी से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर जिले की बहराट पहाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर लिखें आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी गग्गर है। आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी गग्गर है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न, गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखें, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? तो आज हमने राजस्थान की प्रमुख नदियां और राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, कल हम अगली क्लास में नदी घाटी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।